हम ये समझ रहे हैं कि कई लोग गरीब जो होते हैं और किसी की तरफ से उनको किया गया टॉन्ट या उनको किया गया कटाक्ष उनके दिल पे ऐसा असर कर जाता है कि वो उसको चुनौती ले लेते हैं और चुनौती लेने के बाद वो अपना एक गोल बनाते हैं, अपना एक टीचर बनाते हैं। मींस वो अपनी डेस्टिनी आप वहाँ पर लिखते हैं, अपने यहाँ पर पिछले जन्म के माथे पे लिखे लेख नहीं, वो अपनी डेस्टिनी को लिखते हैं कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, अपना एक एम बनाते हैं और उस एम की तरफ अपना दिन रात डाल देते हैं, अपनी जवानी डाल देते हैं, अपना सुख आराम डाल देते हैं। सुख दुख नहीं वो देखते, गर्मी सर्दी नहीं देखते, वो माँ से ये नहीं पूछते कि अगर मैं बाहर गया तो खाऊंगा कहाँ से, वो भूख प्यास से लड़ते हुए, दिन रात से लड़ते हुए, सुख दुख से लड़ते हुए, गर्मी सर्दी से लड़ते हुए, मौसम से लड़ते हुए और पैदल चल चल कर अपनी लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाते हैं और जिस दिन कामयाब हो जाते हैं उस दिन कामयाबी, उस दिन अमीरी उनके कदम चूम लेती है। इसके पीछे एक और बात भी है, अगर कोई इंसान अमीर बनने की लालच में सेल्फिश हो जाए या कोई गरीब इंसान अमीर बनने की लालच में बेईमानी के ढंग से पैसा कमा ले, अगर कमा भी ले, तो उसकी फूटिंग जो है ना, उसकी जो फाउंडेशन है ना, जो उसकी नींव है, वो ना पक्के पैरों पर नहीं होगी, वो स्ट्रांग फाउंडेशन नहीं होगी, वो आज नहीं तो कल टूट जाएगी। लेकिन चाहे गरीब है, उसको रातों रात अमीर बनने का कोई शौक ना हो, उसको अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए चाहे 15-20 साल लगते हैं कोई बात नहीं, ये उसके मन का ख्याल हो, और वो स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस वाली बात को समझता हो, इस कानून को भी, रातों रात गलत माल बेचकर, डुप्लीकेट माल बेचकर अमीर बनने का उसमें कोई ख्याल ना हो, ईमानदारी उसमें कूट कूट के हो और हिम्मत, दृढ़ता, करेज, सच्चाई, ऑनेस्टी, ये सब कुछ हो, और कोई उसको बोले तुम ऐसे इनकम टैक्स की हेराफेरी कर लो, तुम ऐसे सेल टैक्स की हेराफेरी कर लो, तुम ऐसे किसी कॉरपोरेशन के मिनिस्टर को ऐसे कुछ खिला दो, और इन बातों पे वो विश्वास ना रखता हो, बोले नहीं मैंने अपने गोल पे पहुंचना है और मेरे गोल पे पहुंचने की फाउंडेशन के नीचे कोई चूने के पत्थर नहीं होने चाहिए, ये मेरी फाउंडेशन को हिला देंगे मेरी पूरी इमारत गिर जाएगी। तो ऐसे वाले जो लोग होते हैं जो कामयाबी के सारे जितने भी परिभाषा के पॉइंट्स हैं एक एक नुक्ते को कीमती ढंग से अचीव करते हैं, अपने गोल की तरफ चलते जाते हैं, तो वो कामयाब हो जाते हैं। अब हम इस बात को इतनी गहराई तक, इतने नाजुक ढंग से करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं कि अगर कोई अमीर कामयाब हुआ है तो उसकी अपनी मेहनत के पीछे कामयाबी के वो लक्षण थे जिनको उसने पास किया, ईमानदारी, मेहनत, सच्चाई, दृढ़ता, भूख प्यास काटनी और। ऐसे ही जो गरीब से अमीर बना उसके भी पीछे कुछ लक्षण है, और साथ में हम ये भी समझे कि जो नाकामयाब हुआ, चाहे अमीर का बेटा अय्याश और चाहे गरीब का बेटा, नाकामयाबी के भी अपने कोई लक्षण हैं। तो बात सारी ये मालूम हुई कि अमीर और गरीब भगवान जी नहीं बनाते हैं। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अमीर और गरीब पिछले जन्म के माथे पे लिखे लेखों के कारण नहीं है, यहीं पर इसी जन्म में बिजनेस के एथिक्स या कामयाबी के सक्सेसफुल होने के जो एथिक्स हैं या उसके फेलियर के जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में सारा विचार किया, जिसने उनका ध्यान किया वो कामयाब हो गए, जिन्होंने उस पर अमल किया वो कामयाब हो गए, और जिन्होंने उस पर अमल नहीं किया या जिनके अंदर ऐसी कमियां थी कि उन्होंने उसके उस लॉ को, उसको पूरा फुलफिल नहीं किया, वो फेलियर हो गए। तो इसमें भगवान जी का तो कुछ भी नहीं है, भगवान जी तो बीच में आके कुछ नहीं अमीर और गरीब बनाते, भगवान जी को तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। पर अगर हम ये कर्मा थ्योरी और किस्मत और माथे लिखे लेख वाली बात को हटाकर ये सोचें कि अमीर गरीब भगवान जी नहीं बनाते, यहाँ पर हमारी मेहनत का कोई सिट्टा है, यहाँ पर हमारी मेहनत के कारण ही ये सब कुछ होता है, तो हम ये समझ जाएंगे कि ये अमीर और गरीब यहाँ पर धरती पर हमारे बनाए हुए हैं, भगवान जी के बनाए हुए नहीं हैं। ये अमीर लोग सरकारों से मिलके ऐसे ऐसे कानून बनवा लेंगे कि अमीर और अमीर हो जाएगा, ऐसे ऐसे कानून बनते जाएंगे तो गरीब और गरीब हो जाएगा। यही तो हम देख रहे हैं पिछले कई सालों से कि अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं, और बीच में जो धर्म के प्रचारक हैं वो उनको बोल रहे हैं ये भगवान ने बनाए हैं। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हम सब लोग मिलके, चाहे कोई अमीर है चाहे गरीब है, चाहे कोई सरकार में है चाहे कोई किसी राजपाट में है, जब तक हम सारे मिलके इस समाज को, इस धरती को और अपने अपने देश वाले लोग, हम लोग साझीवालता, इकसारता, इक्वालिटी, बराबरता वाली तरफ नहीं आएंगे ना, मिल बांट कर खाने वाली तरफ नहीं आएंगे ना, जिसको पंजाबी में बोलते हैं वंड छकना, जब तक हम इस तरफ नहीं आएंगे तब तक हम इस बात को समझ ही नहीं पाएंगे, इस रोग को काट ही नहीं सकेंगे, और फिर जाकर उसी कुएं में कर्मा थ्योरी वाले में अंधविश्वास के भ्रम में गिर जाएंगे। अब क्या होता है, जो गरीब इंसान है वो अमीरों को बुरा बुरा समझता रहता है, हमेशा अमीरों को पापी और बेईमानी की कमाई वाला समझता रहता है, और अपने आप को समझता है मेरे पिछले जन्मों के कर्मों की सजा मेरे को मिल रही है। पर अगर हम इस दृष्टिकोण को काट देंगे कि पिछले जन्मों की कर्मों की सजा माथे लिखे लेख भाग्य नहीं है, तो होगा क्या? वैसे तो ये बात अपने आप में हमने ही बनाई हुई है ना, असलियत में है या नहीं है। जैसे मैं सुन रहा था एक बार, एक आदमी की पत्नी बोलती है तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो, मेरा कहना नहीं मानते, मुझको साड़ी लेकर नहीं देते, तो मैं मायके चली जाऊंगी। तो वो बोलता है सौभाग्य। तो वो बोलती है मैं मायके चली जाऊंगी, एक साल तक नहीं आऊंगी। बोलता है अहो भाग्य। तो कहती है अच्छा तुमको कोई असर नहीं होगा, इसका मतलब तुम ज्यादा खुश हो जाओगे, लो फिर मैं नहीं जाती। बोलता दुर्भाग्य। ये अहो भाग्य, सौभाग्य, दुर्भाग्य सब हमने बनाए हुए हैं ना, सब हमारे कहे की चल रही है ना, सारी हमारी सोचनी है ना, ये मिल गया तो सौभाग्य, ये ना मिला तो दुर्भाग्य। दरअसल हम इसके इलाज की तरफ अगर आ गए तो क्या होगा, जो गरीब है वो अमीरों को बुरा बुरा नहीं कहेगा, पर जो अमीर है वो ये नहीं सोचेगा कि हमारे पिछले जन्मों का बीजा हुआ हम यहाँ पर खा रहे हैं, हम किसी से क्यों मिल बांट कर खाएं। वो इस पैसे से बराबरता ले आएगा, एक पिता एकस के मुबारक सोचेगा, अरे हम सब भगवान के बच्चे हैं, हम सारे बहन भाई हैं, यूनिवर्सल ब्रदरहुड है, आओ मिल बांट कर शेयरिंग करें। तो वो फिर क्या करेगा, वो विचारवान लोगों के साथ बैठकर ऐसी विचार करेगा कि इन सारे गरीबों को कैसे ऊपर उठाया जाए, इनके अस्पताल बनाए जाएं। हमने तो अपना बड़े बड़े अस्पताल में एक एक लाख रुपया दे के अपना इलाज करा लिया, पर ये गरीब तो बेचारे किसी डॉक्टर के पास जाके 100 रुपया भी नहीं खर्च सकते, आओ इनके इलाज का कोई इंतज़ाम कर दें। वो सोचेगा मेरे बच्चे तो घर में बैठे एक एक दिन में 4-4, 5-5 हज़ार रुपये का सिर्फ पिज़्ज़ा और पेस्ट्री और केक मंगा के खा जाते हैं, तो इनके बच्चों की पढ़ाई का भी इंतज़ाम कर दिया जाए। मेरा बच्चा तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाके भी पढ़ आता है, पर इनका बच्चा तो यहाँ टाट वाले स्कूल में भी बैठ के पढ़ाई नहीं कर पाता है। मेरा बच्चा तो घर में बैठ के भी नौकर को हुक्म चला के काम कर लेता है, पर इनका बच्चा ढाबे पे काम करता रह जाता है, सारी उम्र पढ़ाई नहीं कर पाता है। अगर वो अमीर विचारवानों के साथ मिलके, विचारवान मैं किनको बोल रहा हूँ, जो धर्म का प्रचार करने वाले हैं, काश वो ये माथे लिखे लेख और किस्मत और पिछले जन्मों की कर्मा थ्योरी का पाठ पढ़ाना दुनिया को छोड़ दें, तो वो अमीर को ये समझा सकते हैं तू अपना पैसा धर्म स्थानों पे संगमरमर के लिए मत लगा, वहाँ पर लंगर और प्रसाद बना बना के बांट कर केवल वहाँ पर सोने के छब्बे लगाना छोड़ दे। इनसे किसे गरीब का तन ढक, वो उस अमीर को समझाएंगे और मिल बांट कर करने की बात करेंगे तो बोलेंगे, देख ये जो गरीब के बच्चे हैं ये पिछले जन्म की किस्मत करके बीमार नहीं हुए हैं, ये बचपन से इनको रोटी भी नहीं मिलती है तो ये चौक पे कड़कती धूप में नंगे खड़े होके भीख मांगते रहते हैं, इनका कोई इंतजाम कर दे ताकि इनको वहां पर भीख ना मांगनी पड़े चौक पर खड़े होके। तू उनको दान करके सोचता है मैंने दान कर दिया, तूने धर्म खरीद लिया, तूने किस्मत अपनी मुक्ति आगे के लिए बना ली। यही तो धर्म के प्रचारक बता रहे हैं कि आगे के लिए बीजो। नहीं नहीं नहीं, ये तेरा आगे कुछ नहीं बीजा जाएगा, तू अभी इनका रोग काट दे। और अगर तू इनको दान दे भी रहा है तो उसके पीछे तेरी वावा का ख्याल है। सतिया मन संतोख उपजे देने के विचार, दे दे मंगे सहसा गुड़ा शोभ करे संसार। अगर किसी के मन में आ भी जाए कि मैंने दान करना है तो उसके पीछे वो 100 गुना अपनी वावा मांग रहा होता है अमीर, वो दानी नहीं, वो 100 गुना ज़्यादा बड़ा भिखारी है। तभी तो आप जाइए और कभी धर्म स्थान पर देखिए तो वहाँ लोगों की ना जब प्रार्थना या अरदास या कुछ भी हो रही होती है तो उसमें लंबी लंबी अनाउंसमेंट होती है भी किस अमीर ने कितना पैसा चढ़ाया, तो वो तो अपनी वावा मांग रहा होता है। लेकिन अगर तेरे को ये दिमाग में बैठा रहा कि ये पिछले जन्म की किस्मत के कारण बीमार होते हैं, पिछले जन्म की किस्मत के कारण गरीब होते हैं, तो तेरे को ये ख्याल कभी नहीं आएगा कि इनके छोटे छोटे 4-4, 5-5, 7-7 साल के गरीब बच्चे लोगों की फैक्ट्रियों में बम बनाते रहते हैं, पटाखे बनाते रहते हैं। वो बनाते बनाते उनके जो इनहेलिंग है क्या है, वो इनहेल क्या करते हैं, वो श्वास किस चीज़ के लेते रहते हैं, उस फॉस्फोरस के, वो केमिकल्स के, उस बारूद के। तो उनको टीबी हो जाती है, वो छोटे छोटे बच्चों को, उनको कैंसर हो जाता है, उनको शरीर के दमे के कितने ऐसे ऐसे अजीब रोग लग जाते हैं कि वो अपनी जवानी तक भी नहीं पहुंच पाते और मर जाते हैं। हम बोलते हैं किस्मत में लिखा था, अरे हमको ही कहीं सोचना होगा इस गरीब के बच्चे को क्यों वो बम पटाखे की फैक्ट्री में काम करना पड़ा। पीछे मैं सुन रहा था कि मिडल ईस्ट में कई बारी वो ऊँट की रेस लगाते हुए छोटे बच्चे को ऊपर बिठा देते हैं, उसको बांध देते हैं और जब वो ऊँट भागता है तो वो रेस लगती है। अमीर लोग ताली मार के अपनी रेस के पैसे की शर्त लगाते हैं, पर वो गरीब बच्चा ऊँट के ऊपर से बंधा हुआ ढीला पड़ता है, ऊँट के दोनों टांगों के बीच में उसका सिर फंस जाता है और वो वहाँ पर मर जाता है। क्या ये किस्मत है, क्या ये पिछले माथे लिखे लेख हैं, क्या ये कर्मा थ्योरी है? अरे नहीं, ये हम इंसानों की कहीं पर कोई गलती है। हम दरअसल किस्मत, माथे लिखे लेख, ये सब कुछ करके अपनी साइकोलॉजी को क्या करते हैं, एस्केप कर देते हैं सच से। हम सच से मुनकर हो जाते हैं, हम सच से आंखें मूंद लेना चाहते हैं, इसलिए हम कर्मा थ्योरी को बिलीव करते जा रहे हैं। काश हम ये देखें समाज में क्या कुरीतियाँ। अगर हम किसी की बेटी को दाज के बदले सड़ते हुए देखें, उसके बारे में खबर सुने, तो हमको मालूम है क्या करना चाहिए। अमीरों को और धर्म के प्रचारकों को सबसे ज़्यादा बुलंद आवाज़ उठानी चाहिए कि समाज में अगर किसी गरीब का भला करना है ना, तो मालूम है क्या करो, समाज में से ये दिखावे के, शो ऑफ के, अमीरों के रीत रिवाज ख़त्म कर दो। ये कहना बड़ा आसान है कि अमीर ने अपनी बेटी को दाज दिया है तो कोई बात नहीं, इसको लेने में क्या ऐतराज है, पर मालूम है जो गरीब नहीं दे पाते हैं। कई ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ पर रिंग सेरेमनी नहीं गरीब कर पाए थे तो वो लड़का लड़की पसंद भी करते थे, रिश्ता भी हो गया था, पर रिश्ता टूट गया। कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर लड़के वालों ने मांगा कि हमारे को शादी के टाइम और उससे पहले ठाके शगन कुड़माई के टाइम पर और शादी के बाद ये सब कुछ चाहिए, हमारे रिश्तेदारों को इतने कपड़े चाहिए और हमारे रिश्तेदारों को जो जो आएंगे उनको लिफाफे में इतने पैसे चाहिए और इतनी इतनी सोने की लड़ियाँ चाहिए और हमारे घर के नौकर चाकर को और उस नौकरानी को जिसने बचपन से इस लड़के को पाला जिसकी शादी है उसके नाम की भी सोने की लड़ी दो और जो बचपन से हमारे घर में कुत्ता हमने पाला हुआ उसके नाम की भी सोने की लड़ी दो। तो वो जब नहीं दे पाए तो उन्होंने उसकी बेटी को जला दिया। आज हमारे भारत में ये बेटियों को तीसरी छत से धक्का दे देना, स्टोव के साथ जला देना, या दाज के नाम पे उनकी ज़िंदगी ख़त्म कर देनी या तलाक कर देना, ये सब कुछ हो रहा है ना। असली अमीर वो नहीं है जो किसी गरीब को ब्याह शादी के टाइम पर कुछ पैसे दे देता है। असली शैतान और विलन वो नहीं है जिसने लड़की को जलाया है। असली शैतान और विलन वो है जो समाज में ऐसे दिखावे के रीत रिवाज करता है, जो ऐसे समाज में दिखावे के रीत रिवाज और शराब के साथ शो ऑफ की पार्टियों के प्रोग्राम को चलाकर इंट्रोड्यूस करके भड़काता है लोगों के जज्बातों को। लोगों के पास तो पैसा है, लोग उसको देखते हैं, लोग अज्ञानतावश होकर शो ऑफ करते हैं, और उस शो ऑफ के पीछे जो गरीब मारे जाते हैं। तो विचार का निष्कर्ष ये निकलेगा कि अमीर को चाहिए धर्म प्रचारकों के साथ मिलकर समाज में जो कुरीतियां हैं, समाज में जो शो ऑफ है, समाज में जो धर्म के नाम पर दिखावे की बातें हैं, इन सब का जाल काट के परे फेंकने, तो हम गरीबों का हल कर सकेंगे। और अगर हमने गरीबों का हल ना किया, आप तो अपनी कार में हम बैठ के और शीशा उतार के गरीब को अगर हमने दे दिया, तो वो गरीब के माँ बाप सोचेंगे ऐसे मिलता है तो वो चोरों ठगों का एक डेरा चलता रहेगा, वो किसी भी घर के बच्चे को उठा के ले जाएंगे और चौक चौक पे उनको छोड़ देंगे, जैसे कि हेरा फेरी की जाती है। अच्छे भले इंसान बुजुर्गों को पकड़ पकड़ के वो लोग ले जाते हैं और बेसमेंट में रख के उनको भूखा रखते हैं, उनको मारते हैं, उनके हाथ पांव काट देते हैं, ऊपर पट्टी चढ़ा देते हैं और उनका खून निकलता रहता है, उनको एक चौक पर छोड़ आते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं लोग आएंगे, कार का शीशा नीचे करेंगे, दान दे जाएंगे तो ये दुकान चल गई। ऐसे उनके 15-15-20 स्पॉट्स होते हैं जहाँ से वो ऐसे दान पुण्य इकट्ठा करते हैं। लेकिन जिस अमीर को तरस आ गया है वो उन बच्चों को पढ़ा देगा, उनके माँ बाप को पढ़ा देगा, उनको काम खोल देगा, उनको रहने का स्थान बना देगा। अगर हम इसको मिल बांट के वंट छकना वाली दृष्टि से, सब्बे सांझी वाल सदायन वाली दृष्टि से कि सारे भगवान जी के बनाए हुए बंदे हैं, हम सिर्फ अमीर इसलिए नहीं है कि पिछले जन्म के कर्मों का हम यहाँ पर बख्शिश ले रहे हैं, पिछला बीजा हुआ हम यहाँ पर खा रहे हैं। अगर कोई भी अमीर ये सोचने लगेगा तो इस धरती पर ज़्यादा से ज़्यादा जितने गरीब अस्थमा और टीबी और कैंसर से मर जाते हैं वो नहीं मरेंगे, और जितने गरीब हमारे आसपास घूमते रहते हैं। पर ये हमको अच्छा लगता है कि गरीब गरीब रहे, क्योंकि हमारे बर्तन कौन मांजेगा, हमारे घर की सफाई कौन करेगा, हमारे घर के कपड़े कौन धोएगा, क्योंकि हमारे घर के लोगों को तो टाइम नहीं है, उन्होंने तो फिल्म देखने जाना है, उन्होंने तो किट्टी पार्टी जाना है, उन्होंने तो किसी धर्म स्थान पर पूजा पाठ करने जाना है, उन्होंने तो कहीं तीर्थ पर जाना है ना। इसलिए हम लोग चाहते ही नहीं है कि गरीब उठ जाए। काश हम इस विचारधारा को अपने दिमाग में से निकाल कर फेंक दें कि ये गरीब पिछले जन्म के कर्मों की सजा भोग रहे हैं, ये माथे लिखे लेख की कोई बात नहीं है। हमको चाहिए कि हम मिल बांट कर खाएं। जब हम ये पिछले जन्म की कर्मा थ्योरी और माथे लिखे लेख और किस्मत के ख्याल से बाहर आ जाएंगे ना, तो हमको नई दिशा मिलेगी। उस नई दिशा में हमको ये भी समझ आ जाएगा कि ये जो लोग चोरी करते हैं, ठगी करते हैं, फरेबी करते हैं, और जो लोग इधर से उधर कुछ ना कुछ गलत काम करके जेल में चले जाते हैं, हम उनको सजा देते हैं, हम उनको मारते हैं, वो जेल में जाकर और बड़े बदमाश बनकर बाहर निकलते हैं, तो ये सारी बीमारी के बारे में हमको असलियत में समझ आ जाएगा कि दरअसल इनका बचपन में इनको रेज ठीक नहीं किया गया, इनका ब्रॉटअप ठीक नहीं किया गया। फिर हम उनको अगर बचपन से ठीक ठीक समझाना शुरू करेंगे, जैसे मुझको खुशी हुई, मैंने पीछे सुना कि तिहाड़ जेल में जो अब कैदी हैं ना, उनको मारने की बजाय पढ़ाते हैं। मैंने सुना, अखबार में आया कि उन कैदियों को पढ़ाकर उनको वहाँ पर बीए और एमए करा रहे हैं, उनको कंप्यूटर सिखा रहे हैं। उनमें से कई कैदी ऑल इंडिया लेवल पे या आईएएस लेवल के एग्ज़ाम दे रहे हैं। ये उनका दुख काटना तो है, ये उनको अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाना तो है। काश हमारा इस नई दिशा की तरफ दिमाग चल पड़े, सबका चल पड़े, नीचे से लेके ऊपर तक, अमीर से लेके गरीब तक, गरीब से लेके अमीर तक, और छोटे से लेकर सरकार के बड़े औहदे तक, सबका, हमारी सारी मशीनरी का, हमारे समाज का, हमारे सारे मजहबों वालों का, सबका ये ख्याल बन जाए कि हम इन गरीबों का कुछ कर सकते हैं तो हम समाज की उस दुखती हुई रग को हाथ लगा सकेंगे, उसका इलाज ढूंढ सकेंगे। हम उनके बारे में, उनके रोगों का, उनकी पढ़ाई का, उनके रहने सहने का इंतज़ाम कर सकेंगे। ये एक नई दिशा होगी। तो अगर आपने किसी इंसान को पढ़ाई पर लगाकर अपने पाँव पे खड़ा कर दिया, वो किसी की चोरी क्यों करेगा? वो किसी का पर्स क्यों छीनेगा? वो एक चौक पे खड़ा होकर किसी की कार में से पर्स क्यों ले जाएगा? आजकल आम सुनने में आता है कि शीशा इस तरफ से नीचे करते हैं, वो बात कर रहा होता है, दूसरी तरफ से वो पर्स ले जाता है। वो ऐसे काम क्यों करेगा? वो वेला नहीं है, उसके पास व्यर्थ गंवाने का समय नहीं है, उसको काम मिल गया। और जो इंसान की बीमारियों के कारण, उसको कई दफ़ा ऐसे भी लोग हैं जिनको माँ मर जाएगी, दवाई के लिए पैसे नहीं हैं, कहीं से चोरी करनी पड़ती है, अगर हम उसका इलाज कर दें, अगर हमारी जगह जगह पर ऐसे अच्छे अच्छे हॉस्पिटल खुले हों कि वहाँ पर गरीबों का फ्री इलाज किया जा सकता हो। भारत सोने की चिड़िया था, भारत अब भी सोने की चिड़िया है, पर इसकी सोने की चिड़िया अब कहाँ गई? अब लोगों ने इसकी सोने की चिड़िया के ना जेवरात बना बना के अपनी अलमारियाँ भर ली हैं, लॉकर भर ली हैं, अपने तकिए और अपने मैट्रेस के नीचे सारे सोने को और नोटों को दबा दिया है। एक एक इंसान ने 10-10, 20-20 जगह प्रॉपर्टी लेके पैसा कंक्रीट में दबा दिया है। गरीब को चांस नहीं मिल रहा है। काश भारत दोबारा से वही सोने की चिड़िया बन जाए। कैसे? यहाँ पर पैसा तो बहुत है, यहाँ पर धर्म भी बड़ा है, पर हम लोगों के साथ बराबरता की कोई बात नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? जैसे मैंने एक पीछे पढ़ी थी, एक इल्यूजन पढ़ा कि एक बारी चीन में कुछ हो रहा था, कोई धार्मिक मेला, और उस मेले में बड़े लोग आ रहे थे, तो एक आदमी कुएं में गिर गया। तो वहाँ पर कुएं के पास आके एक धर्म का आदमी आके बैठा, तो उसने अंदर से आवाज़ सुनी कि वो बोल रहा है, मेरे को कुएं से निकालो। तो ये बोलता है, अरे तुम कुएं में गिरे हो, मैं क्यों निकालूं? तुम पिछले जन्मों के कर्मों करके गिरे हो गए, तुम्हारी किस्मत में ऐसे ही लिखा होगा, मैं क्यों निकालूं? वो चला गया और ये बेचारा आवाज़ मारता रह गया। फिर किसी और मज़हब वाला दूसरा इंसान आया, वो जब कुएं के पास खड़ा था, उसने सुना तो उसने बोला, अरे ये चक्रव्यूह में मैं तो तुम्हारा साथ नहीं देना चाहता, क्योंकि अगर मैं तुमको कुएं में डालूंगा और तुम्हारी किस्मत में लिखा है या भगवान के चक्कर में कहीं लिखा हुआ है कि यहाँ कुएं में किसी को आज मरना चाहिए, तो तुम्हारे को निकालूंगा और मैं मर जाऊंगा। और हो सकता है पिछले जन्म में तुमने ऐसा किया हो, मैं अगर ऐसे करूंगा तो अगले जन्म में पता नहीं मुझको क्या सज़ा मिलेगी। कर्मा थ्योरी के चक्कर में उसने भी उसको नहीं निकाला। फिर एक और इंसान आया तो वो बोलता है, अपने कर्मों की सज़ा भोग रहे हो, मैं तो नहीं कुछ करता। तो हर कोई अपने अपने मज़हब वाला इंसान आके उसको निकालता नहीं है। पर मैंने सुना एक और इंसान आया, उसने उसकी आवाज़ सुनी तो उसने अपने थैले में से रस्सा निकाला, कुएं में फेंका और उसको बाहर निकाल लिया। तो वो बोलता है, अरे तुम कर्मा थ्योरी में बिलीव नहीं करते? बड़े अफसोस की बात, वहाँ पर लिखा है कि वो कर्मा थ्योरी में बिलीव करता था कि नहीं करता था और मज़हब वालों की तरह, पर वो अगले जन्म के उसमें बिलीव करता था। क्या? भगवान जी का रिवार्ड, मुक्ति, हेवन, स्वर्ग। बोलता है, हम अपने झोले में रस्सा इसलिए रखते हैं कि कहीं पर तुम्हारे जैसे लोग अगर गिरते रहें तो उनको निकालते रहें, तो हम पुण्य का थैला भर लेंगे, तो हमको स्वर्ग मिलेगा, हमको मुक्ति मिलेगी। अरे हम ये प्रेजेंट से कब तक टूटते रहेंगे? हम ये क्यों नहीं सोचते कि पिछले जन्म का और अगले जन्म का, कर्मा थ्योरी या फल, आगे या पीछे, ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक सोचनी है, ये फैक्ट नहीं है। अब यहां पर एक व्यंग ख्याल में आता है, आयरनी, यहां पर एक व्यंग हमारे ख्याल में आता है कि अगर कोई इंसान से गलत काम हो जाए, चोरी हो जाए, डकैती हो जाए, झूठ बोला जाए या समाज में कुछ गलत हो जाए, तो हम उसको सजा क्यों देते हैं? हम उसको कर्मा थ्योरी समझ के छोड़ दें। और साथ में साथ, जैसे मैंने पहले बोला कि अगर हम कोई गलत काम कर दें तो उसके लिए हम भगवान जी से जा जाकर, गॉड जी से, राम जी से, अल्लाह जी से, वाहिगुरु जी से, खुदा जी से माफ़ी मांगते हैं कि हमारे कर्मों को माफ़ कर दो, और पिछलों का तो माफ़ ही कर दो, और इस मरने के बाद अगले जन्म का आवागमन रीइनकार्नेशन भी काट दो। तो ये आयरनी हो गई कि अपना तो हम पाप बख्शवाना चाहते हैं और किसी और को हम बख्शना नहीं चाहते, उसको बल्कि पकड़ के हम जेल कर देते हैं। ये सारा भ्रम है ही इसलिए क्योंकि हम तकदीर और माथे लिखे लेखों को मानते फिरते हैं। अगर हम ये सोच लें, दद्दा दोष न देव किस्से, गुरुवाणी में आता है, दद्दा दोष न देव किस्से, दोष कर्मा आपणिया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजिए अवर्जना, फिर हम दूसरे लोगों के ऊपर ब्लेम नहीं लगाएंगे, फिर हम किसी और के कारण नहीं कहेंगे, फिर पिछले जन्म की किस्मत करके नहीं कहेंगे, फिर हम सोचेंगे मैंने जैसा बीजा है यहाँ पर वैसा ही मैंने, मेरे को काटना पड़ा, मैंने बुरा किया था यहीं पर, मेरे को अभी इसी जन्म में ही उसका फल मिल गया, चाहे वो बच्चा है, चाहे बड़ा है, चाहे बुजुर्ग है। अगर समझ में आ जाएगी कि यहाँ पर कानून पक्का है कुदरत का, ऐ कर करे सो ऐ कर पाए, बीजे बिक मंगे अमृत वेखो ये नहीं आओ, अगर कोई ये समझ लेगा कि यहाँ पर अगर बिक जहर को बीजते हैं तो अमृत प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर ये बात समझ में आ जाएगी, जैसे जपजी में पढ़ते हैं हम सब लोग, गुरुवाणी में आया, आपे बीज आपे ही खाओ, जैसा हम बीजते हैं वैसा ही हम खाते हैं, तो ये बात समझने के बाद हमको कर्मा थ्योरी से तो अपने आप दिमाग से भ्रम हट जाएगा, और सारा मुसीबत का सेहरा हम अपने कंधों पर ले लेंगे। वो इंसान दलेर होता है जो अपनी गलती मान ले, वो इंसान दलेर होता है, उसका इंटेलेक्ट, उसकी कॉमन सेंस, उसकी सिक्स्थ सेंस, उसका असली धर्म काम कर रहा है अगर वो ये मान ले कि ये गलती मेरे कारण है, इस गलती की जिम्मेवारी मेरे सिर है, मेरे कंधों पर है। तो जब वो ये सोच लेगा तो फिर वो अपने आप को सुधारेगा, वो किस्मत पर नहीं छोड़ेगा, वो कर्मा थ्योरी पर नहीं छोड़ेगा, वो समझ लेगा जेहा बीजे सो लुणे कर्मा संदला खेत। पर हम जब देखते हैं हमारा बच्चा बिगड़ गया है तो हम बोलते हैं किस्मत, पिछले जन्म के कर्म, कर्मों का फल। पर हमको मालूम नहीं है कि हमने जब अपने बच्चे के सामने माता पिता ने झूठ बोला था, माता पिता ने जब झगड़े किए थे, जब पिता ने माँ को स्त्री समझकर पांव की जूती बनाकर दबाया था, तो ये सारे वाले जितने भी शैतानियत वाले अवगुण हैं, ये जो बैड डीड्स हैं, ये जो रॉन्ग एक्शंस हैं, ये सारे के सारे बच्चे ने सीख लिए। यही तो है जेहा बीजे सो लुणे कर्मा संदला खेत, यही जो हमने जीते जी यहाँ पर कर्म किए हैं, जैसे जैसे हमने झूठ बोला है, जैसे जैसे हमने झगड़े किए हैं, जैसे जैसे हमने गालियाँ निकाल निकाल के अपने बच्चों को वहाँ पर बड़ा किया है, जैसे हमने क्रोधित गुस्से होकर अपने बच्चों को बड़ा किया, बड़े होकर उनके संस्कार भी उनके कर्म भी वैसे ही हो गए, और वो जो बड़े होकर ऐसे बने हैं वो हमारे कर्मों का फल बच्चा भोग रहा है यहीं पर, हमने उसको ऐसा बनाया, और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस निकलेंगे, उसके जो नुकसान होंगे वो हमको भुगतने पड़ेंगे, हमने ही बीजा और हम ही को काटना पड़ रहा है, हमारी औलाद ठीक नहीं निकली। यही है जेहा बीजे सो लुणे, इसी को बोलते हैं ऐ कर करे सो ऐ कर पाए। हमको यही तो समझना है। अब अगर हम नई सदी में इस नई दिशा के दृष्टिकोण से समझें तो हमारा ये भी भ्रम दूर हो जाएगा कि बच्चा किस्मत के कारण बनता है। हम जानते हैं कई ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता ने इतनी ज़्यादा मेहनत की, अगर बच्चा स्पोर्ट्समैन बनना चाहता था, अगर वो स्विमिंग का कुछ अच्छा प्लेयर बनना चाहता था या हॉकी का या क्रिकेट का, तो उसके पीछे उस बच्चे की लगन, मेहनत और उसके माता पिता की कुर्बानी, जो वो दिन रात उस बच्चे को स्पोर्ट्समैन बनाने के लिए मेहनत करते रहे। ऐसे ही जो बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बना और उसने कामयाबी को छुआ है, तो उसके पीछे कोई मेहनत है, वो कर्मा थ्योरी नहीं है पिछले जन्म की, वो माथे लिखे लेख या वो किस्मत नहीं है। अगर ये बात समझ में आ जाएगी तो जब हमारे बच्चे एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं या पास हो जाते हैं, तो हम उसको कर्मा थ्योरी से पिछले जन्म की और किस्मत के साथ नहीं जोड़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि बच्चा पढ़ तो रहा नहीं है और माएँ बोल रही हैं कि धर्म स्थान पर माथा टेक के जाओ, तुम पास हो जाओगे, किस्मत में लिखा है तो भगवान जी पास कर देंगे ये और वो। ऐसे नहीं होगा। जो बच्चा पढ़ाई करता है उसको माथे लिखे लेख के ऊपर विश्वास नहीं होता है, वो पढ़ाई करता है और अपनी मेहनत लगन से करता है और उसको कॉन्फिडेंस होता है कि मैं पास होऊंगा ही होऊंगा। पर जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं या जिनके माता पिता भी ऐसे गलत विश्वास में, अंधविश्वास में ख्याल रखते हैं, वो ही बच्चे के फेल और पास होने में उसको किस्मत के साथ जोड़ते रहते हैं। और अगर इस बात के बारे में हमारी आंखें खुल गई तो हमको पता लग जाएगा कि मैंने अपनी बच्ची का जब रिश्ता लेना है तो मैं ध्यान से क्या देखूं उसमें। हम सोचते हैं मैंने अपनी बेटी को यहाँ पर ब्याया और ब्याने के बाद क्या हुआ, उन्होंने मेरी बेटी को जिला दिया, हमारी किस्मत में ऐसे लिखा था, उसके कर्मों में ऐसे लिखा था, उसकी जन्म की किस्मत उसके माथे लिखे लेख को कौन टाल सकता है जी। पर कोई हमसे पूछे हमने क्या देखा था, हमने उनका स्टेटस देखा अपनी बेटी का हाथ उनके हाथ में देने के लिए। हमने तो ये देखा कि उनके पास प्रॉपर्टी है, हमने देखा वो तो अमीर है, हमने तो ये देखा वो अपने बाप का इकलौता बेटा है, हमने तो ये देखा उनका समाज में बड़ा नाम है। पर हमने उनका किरदार तो नहीं देखा, हमने उनका कैरेक्टर तो नहीं देखा, हमने ये नहीं सोचा कि वो समाज में तो बड़े ऊंचे हैं लेकिन बड़ी ऊंची शराब भी तो पीते हैं, वो समाज में बड़े ऊंचे हैं लेकिन बड़े ऊंचे ऊंचे नाम वालों की ऊंची दुकान फीके पकवान होते हैं। जैसे उसका बाप घर में अपनी माँ को मारता था, उसकी माँ को मारता था उस लड़के की, ऐसे ही वो लड़का हमारी बेटी को मारता था, शराब पी कर आता था, मारता था, अल्टीमेटली पैसे की लालच, मटेरियल वर्ल्ड का असंतोष उनको, तो उन्होंने हमारी बेटी को जला दिया, मार दिया। अगर उस टाइम हम उसके मरने के बाद किस्मत और पिछले जन्म के कर्मों का माथे लिखे लेख मानते रहे तो हमको कचहरी में केस करने की जरूरत क्या है, फिर तो हम घर बैठ जाएं। पर कचहरी में इसके कितने सारे केस हैं ना, वो सारे केस करने वाले, वो जुल्म करने वाले किसी की बहू को, किसी की बेटी को जिसको उन्होंने अपनी बहू बनाया था, उसको जला देने वाले, मार देने वाले माथे लिखे लेख पर बिलीव रखते हैं, ये पिछले जन्म की किस्मत पर बिलीव रखते हैं। जब वो उसको बोलते हैं ना हमारी किस्मत में ये लिखी हुई थी लड़की, कहाँ हमारे घर में ये कुलक्षणी आ गई, ऐसे बोलते हैं वो लोग। और ये माथे लिखे लेख मानने वाले लोग उसको जला देते हैं और ये माथे लिखे लेखों को मिटाने के लिए धर्म की आड़ लेकर वही लोग धर्म स्थान पर जाकर संगमरमर या सोने का पत्थर चढ़ाकर और वहाँ पर पाठ रखा के अपने माथे के लेख मिटवा लेते हैं कि सजा ना मिले। और जब कचहरी का केस होता है तो वहाँ पर किसी को रिश्वत दे के अपने आप को बचा लेते हैं और कर्मा थ्योरी पर बिलीव कर रहे होते हैं। काश ये माथे लिखे लेख की बात को हम समझ लें कि ये है नहीं ऐसे, ये यहीं पर हमारा कुछ है, ये जन्मों जन्मों से तकदीर और कर्मा फल की जो बातें हमारे दिमाग में बिठाई गई हैं इनके कारण बन गए हैं अमीर गरीब, राजा भिखारी, इनके कारण बन गई है ऊंची जात और नीची जात। ये जात का जो वितकरा चल रहा है ना, इसके पीछे भी कोई धर्म का जंजाल बनाया हुआ है जी। तुम पिछले जन्म में फलानी जात के घर पैदा हुए थे इसलिए इस जन्म में भी तुम ही उसी जात के हो, हम पिछले जन्म में उच्च जात के घर पैदा हुए थे इसलिए हम इस जन्म में उच्च जात के हैं, तो तुम नीची जात से ऊंची जात वाला काम नहीं कर सकते, तुम अपना काम नहीं छोड़ सकते, जात बदल दोगे भगवान जी सजा देंगे, इसलिए अपनी जात वाले कितने में ही काम करना चाहिए। ये जो कहावती जात पात बना दी, ये अछूत है, ये अनटचेबल है, ये लोअर कास्ट है, ये सब कुछ क्या बना दिया गया, ये सारा भी धर्म के जंजाल पे पिछली जन्म के किस्मत के माथे लिखे लेखों वाली बात के साथ मिला के बना दिया गया। कि तुम नीची जात के इसलिए हो क्योंकि पिछले जन्म में भी तुम नीची जात के घर पैदा हुए थे। तो ये जो धर्म के ठेकेदारों का, प्रचारकों का ऐसा जंजाल बिछाया गया, उसके कारण ही ये मनौत बन गई, ये नोशन बन गई कि पाप और पुण्य कोई चीज़ है, जबकि गुरबाणी में बोलते हैं ये पाप पुण्य तै पई कहावत है, ये कहावत है सिर्फ। उनके ये भरम जाल के जलाने के कारण ये आस्तिक नास्तिक, पापी पुण्य और स्वर्ग नरक, दोजक और बहिष्ट, हेल और हेवन, लोक और परलोक, ऐसे अंधविश्वास वाले लफज दुनिया में प्रचलित हो गए। पर इन सब के पीछे पिछले जन्मा की कर्मा थ्योरी माथे लिखे लेख की तकदीर वाली बात की कहानी चलती है। तो इससे क्या होता है, सब झूठ की दुकानें चलती रहती हैं। अमीर और अमीर होता जाता है, धार्मिक प्रचारक और अमीर होते जाते हैं, गरीब बेचारा गरीब होता जाता है। पर गुरुवाणी में ये जात पात, लोक परलोक, स्वर्ग नरक, हेल और हेवन, और ये ऊंची जात और नीची जात, पाप और पुण्य, आस्तिक और नास्तिक, ये सारी विचारधारा को एक्सेप्ट नहीं किया गया। अगर स्वर्ग नरक की बात आई तो गुरुवाणी में आया, जो कि सिखों की गुरुवाणी नहीं, कबीर साहब की वाणी को भी गुरु ग्रंथ साहब में लिखा गया है। उसमें कबीर साहब बोलते हैं, स्वर्ग बासना बाछिए, डरिए न नरक निवास, होना है सो होएगो, मने न कीचे आस। कवन नरक क्या स्वर्ग बिचारा, संतन दो रादे, हम काहू की कान न कटते, अपने गुर प्रसाद दे। मेरे को सच समझ में आ गया, इसीलिए कबीर साहब ने बोला, बहुर हम काहे आवेंगे, हम दोबारा नहीं आएंगे, हमको कोई डर ही नहीं है, ना हमने पाप किया ना पुण्य किया है, हम नहीं समझते कोई स्वर्ग नरक है, हम नहीं समझते कि दोजक और कोई बहिष्ट है। ये सारी खेल के पीछे विचारधारा यही थी कि अमीर को अमीर बनाए रखें कि तुमने पिछले जन्म का बीजा हुआ यहाँ पे खाया, इसलिए धर्म को तुम रिश्वत देते रहो। तो धार्मिक लोग और अमीरों ने शेक हैंड कर लिया और गरीब बेचारा और गरीब हो गया। पर गुरु जी ने गुरबाणी में जो सिखाया वो बात अलग है, पर ये प्रैक्टिकल भी करके दिखा दिया। जिनको बोलते थे ना ये नीची जात के हैं, नाई, छींबे, लोहार, ये सबको बोला, तुम पिछले जन्म की किस्मत मानते हो, पिछले जन्म के कर्म लेख मानते हो, माथे लिखे लेख तकदीर मानते हो, तेरा पिछला जन्म नाश, तेरा पिछला कर्म नाश, तेरे पिछली कुल नाश, तेरी जात खत्म, तेरी पात खत्म, सब कुछ खत्म, तू एक इंसान है और प्रेजेंट आज तू सच के घर में पैदा हुआ है। सतगुरु के जन्म में गवन मिटाया, आज तू सच की नॉलेज के घर, मींस गुरु के घर, विवेक बुद्धि के घर, ट्रुथ की नॉलेज के घर, यूनिवर्सल ट्रुथ के घर पैदा हो गया है। आज तू खड़ा हो जा कि तू इंसान है और तू भी अमीरी मान सकता है, और उन्होंने सबको बराबरता पे लाकर खड़ा कर दिया। ये जो हरमंदिर साहब में चार दरवाजे बनाए हैं ना, वो है ही इसीलिए, प्रतीक, खत्री, ब्राह्मण, सूद, वैश, उपदेश, चौवर्णा को सांझा। ये नहीं कि यहां पर कोई ऊंची जात वाला आ सकता और नीची जात वाला नहीं, सारे बराबर। लंगर लगा दिए, सारे बराबर बैठ के खाओ, प्रसाद बांटा। ये नहीं कि धार्मिक देगा और धार्मिक ही लेगा, अछूत वहां पर आ नहीं सकता, ऐसा नहीं है, सारों को बराबरता पर ले आए। सरोवर बनाया कि जात पात को दूर करो और बराबरता से ना हो, इक्वालिटी सिखा दी। ये सारा कुछ प्रॉपरली करके दिखा दिया, प्रैक्टिकल शेप में, प्रयोग में ले आए। अगर कोई ऐसे लोग किस्मत और माथे लिखे लेख मानते होते तो वो नाई छींबे जो थे उनके बारे में गुरुजी बोलते हैं, इन सिंगण को दियो पातशाही, ये याद करें अमरी गुरियाई, मींस ये अपने आप को समझते थे कि मैं नीची जात का हूं। अब आज इस बात को आप देखो, बाजार में देखो, बाहरले देशों में तो मैकडॉनल्ड्स है सो है, पर बाहरले देशों में वो इंसान सबसे ज्यादा कामयाब है जिसका चाहे अपना पेट्रोल पंप है, चाहे अपना बड़ा ऑफिस है, चाहे अपना मैकडोनल है, चाहे अपना पिज़्ज़ा हट है, चाहे अपना डनकिन डोनट है, चाहे जो मर्जी है, अगर उसको टेबल साफ़ करना पड़ा है अपने आप कर लेता है, अगर उसको अपना सड़क साफ़ करनी पड़ी है तो अपने आप कर लेता है, अपना कमरा साफ़ करना पड़ा, अपना बाथरूम साफ़ करना पड़ा है, वो ये नहीं समझता कि मैं मालिक हूँ, सिर्फ नौकर करेंगे, जमादार आके करेगा, वो ये नहीं सोचता। ये पहले बाहर की बात ही, आज इंडिया में भी हम देखते हैं मैकडोनल्ड्स है, पहले समझते थे कि ये झाड़ू मारना किसी चूड़े का काम है, गंदगी उठाना किसी कहावती सो कार्ड अछूत का काम है। अरे अगर गंदगी उठाना अछूत का काम होता तो जब हम बचपन में थे, हमारी गंदगी, हमारी विष्ठा, हमारा सब कुछ मल मूत्र हमारी माँ उठाती थी, क्या हमारी माँ जमादार नहीं हो गई? हमारे माता पिता हमारा मल मूत्र गंदगी उठाते हैं तो क्या वो अनटचेबल हो गए? गंदगी उठाने वाले को अनटचेबल तो नहीं कहते, हमको तो उसका मित्र समझना चाहिए कि वो हमारी गंदगी मल मूत्र की बदबू को भी सहन करके सफाई करता है, हमको उनका धन्यवाद करना चाहिए, हमको उनको अछूत नहीं कहना चाहिए, अनटचेबल नहीं कहना चाहिए, पिछड़ी जाति के नहीं कहना चाहिए, सारे इंसान हैं, सारे भगवान जी के बनाए बंदे हैं। आज मैकडोनल्ड में जाके देखो, यही पढ़े लिखे लोग, नौजवान पनीरी जो है, जो आज की हमारी पीढ़ी है, नौजवान पढ़ी लिखी, वो कैश काउंटर पे भी खड़ी है, वो ट्रे लेके आपको सामान भी दे रहे हैं, और वो पीछे कुक भी कर रहे हैं, और वो बाथरूम तक जाके झाड़ू मार के गंदगी भी साफ़ कर रहे हैं, आपकी जूठी प्लेटें भी उठा रहे हैं, सब कुछ उठा रहे हैं, पर वो जो ड्रेस पहनते हैं उस ड्रेस से लगता है ये मैकडोनल्ड का एम्प्लॉई है। वहाँ पर ऐसे नहीं है कि ये जमादार है या ये कैश पे खड़े होने वाला है। और जैसे बाहरले देशों में हम सुनते थे कि जी झाड़ू मारने वाला भी कार पर आता है, आज हम अपने देश में भी देखते हैं कि वो ऐसे कपड़े पहन के बाहर निकलते हैं, मालूम नहीं पड़ता कि इसने अंदर झाड़ू मारा था कि ये अंदर कैश काउंटर पे खड़ा हुआ था। ये क्या है? ये खरा सच है, क्योंकि सारी दुनिया सच की तरफ अग्रसर हो रही है, सारी दुनिया इस अंधविश्वास से निकल रही है। यही तो हम भी कहना चाहते हैं कि अब 21st सेंचुरी आ गई, अब इस अंधविश्वास से निकलो, तकदीर और जात पात और अमीरी गरीबी ये भगवान जी के बनाए नहीं हैं, ये सबको हम समतल पर ला सकते हैं, सबको हम बराबरता पर ला सकते हैं, अगर हम समझ लें कि हम मिल बांट कर खाएंगे, अगर हम समझ लें कि हम अमीर किस्मत करके नहीं हैं, अगर हम समझ लें कि हमने पिछले जन्मों की कर्मों की सजा भोग कर गरीब नहीं हैं, एक पिता एकस के हम बारक हैं। तो ये जो सिद्धांत है, ये जो विचारधारा है, ये हमारे तह दिल तक चली जाएगी, हमको समझ में आ जाएगी कि ये बराबरता प्रैक्टिकली रूप में हमने जीनी है। तो इस धरती पर एक नए समाज की सृजना होगी, ये वही समाज होगा जो पुराना भारत था, भारत सोने की चिड़िया होगा, और हमसे सारी दुनिया ये इक्वालिटी सीखेगी। यहां पर धर्म गुरु हुए, यहां पर सच का प्रचार करने वाले कितने धर्म पैदा हुए, आज सारी दुनिया को भारत ने धर्म दिया, पर यहां पर ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है, अनइक्वालिटी क्यों है, ये बराबरता क्यों नहीं है, यहां पर ये अमीरी गरीबी का खप्पा, ये दूरी, ये खाई क्यों है? ये सारी बराबर हो सकती है, जबकि यहीं पर तो समझाया गया था कि हम सारे भगवान के बंदे हैं, हम सब भगवान की बनाई औलाद हैं, हम सारे बहन भाई हैं, इसी को तो यूनिवर्सल ब्रदरहुड बोलते हैं, यही तो सीखना है। पर इस सीखने के लिए हमारे मन से, हमारे जहन से, हमारी आत्मा से, हमारे ब्लड से, हमारे एक एक रग से, हमारे एक एक डीएनए में से इसको निकाल के बाहर फेंकना होगा कि ये किस्मत और पिछले जन्मों के कर्मों के फल या माथे लिखे लेख हैं। यही तो समझना है हमको। अब इस पॉइंट को एक और एंगल से हम समझते हैं। अब तक हमने पिछले जन्म के लेख, माथे लिखे भाग्य, तकदीर को कई दृष्टिकोणों से समझा, पर एक और दृष्टिकोण भी है जिसके बारे में बहुत लोगों को बातें करते मैंने सुना है, और जब मैं लिविंग ट्रेजर सेमिनार करता हूँ उसके बाद कई लोगों ने मेरे पास आकर ऐसे ऐसे क्वेश्चन किए हैं, या कई लोग मुझको ईमेल में या चिट्ठी लिखकर ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, और मैंने आपस में उनको बातें करते सुना है। क्या वो बोलते हैं, जी अगर किस्मत नहीं है, अगर पिछले जन्म के लिखे हुए लेख माथे पे नहीं है, तो ये कैसे हो जाता है कि एक इंसान अमीर के घर में पैदा हुआ और एक गरीब के घर में पैदा हुआ? वो अपने आप सवाल बना लेते हैं और अपने माने हुए अंधविश्वास के भ्रम के कारण उसका आंसर भी दे लेते हैं। ये तो ऐसे हो गया, सलाम जवाब दोवें करें मुंडो कुत्ता जाए। भाई अपने आप क्वेश्चन तुमने कर लिया और अपने आप आंसर कर लिया, अब आपको आंसर कौन देगा? अगर अपने आप क्वेश्चन कर लो और अपने आप आंसर दे लो तो दुनिया को कोई इंसान किसी को कुछ समझा नहीं सकता। पर हम तो अपने आप में ये एक विचार को दलील की कसौटी पे समझने का यत्न कर रहे हैं। हम कोई भगवान की सृष्टि के नियम को नहीं बदल रहे हैं, हम सिर्फ इंसानों की इसको बोलते हैं कन्वेंशनल सोच, कन्वेंशनल थिंकिंग, इसको बोलते हैं इंसान की बनाई हुई थिंकिंग, हम तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब अगर हम इसको एक और दृष्टिकोण से समझें, कई लोग बोलते हैं कि फलाना अगर अमीर के घर में पैदा हुआ है तो ये पिछले जन्मों की किस्मत का उसको फल मिला है, अपनी किस्मत, और अगर ये गरीब के घर कोई पैदा हुआ है तो ये पिछले जन्मों के इसने कांटे बीजे होंगे तो अपने कर्मों के फलों की सजा के इसको गरीब के घर जन्म मिला। अभी हम आप ही बोल रहे थे कि ये अमीर के घर में पैदा हुआ है, पिछले जन्मों की किस्मत का इसको रिवार्ड मिला है, इनाम मिला है, भगवान जी की बख्शिश के अमीर के घर में पैदा हुआ है। और अब हमने उसको बदल दिया, क्या अगर अमीर के घर में ही पैदा हुआ बच्चा अपाहिज हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, उसको पोलियो हो या उसकी दिमाग की नसें पूरी काम नहीं करती हैं, उसको फिट पड़ते हैं, तो अभी हम पहले बोल रहे थे कि अमीर के घर में पैदा हुआ है किस्मत, पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का फल, तो अब हमने बोल दिया इसकी किस्मत में लिखा ही ऐसे था। अरे किस्मत में लिखा ऐसे ही था तो अमीर के घर कैसे पैदा हुआ? पहले तो जस्टिफाई कर दिया कि किस्मत के कारण अमीर के घर पैदा हुआ है, पिछले जन्मों के कर्मों के फल के कारण, और अब बोल दिया ये बीमार इसलिए है, ये अपाहिज या हैंडीकैप इसलिए है कि पिछले जन्मों के कर्मों का फल। अब कोई हमसे पूछे अगर पिछले जन्मों के कर्मों के फल के कारण गरीब या अमीर के घर जन्म मिलता है, और साथ में हम बोलते जाते हैं ये 84 लाख जून का चक्कर काटने के बाद हमको मनुष्य देही मिलती है, तो मैं सोचकर बड़ा हैरान हो रहा था जब बाहरले देशों में मैं देखता हूँ कि चाहे अमेरिकन है चाहे यूरोपियन है, वो जिसको वाइट कलर वाली बोलते हैं, गोरी लेडी स्त्री, वो अपने साथ एयर कंडीशन्ड कार में कुत्ता रखती है, कुत्ते के लिए सुपरमार्केट से बिस्कुट लाती है, उसको बिस्कुट खिलाती है, कुत्ता को दूध पिलाती है, कुत्ते को मीट की चीज़ें ला के खिलाती है, और कुत्ता अगर बीमार हो जाए तो उसको महंगे से महंगे डॉक्टर के पास लेके जाती है, कुत्ते को नहलाने के लिए बढ़िया साबुन लेके आती है, कुत्ते को प्यार करती है, पति से ज़्यादा कुत्ते को प्यार से हनी करके बुलाती है। इस कुत्ते के कंपैरिजन में आप उस बेचारे गरीब को देखें जो गरीब फुटपाथ पर पड़ा है, वहीं से गाड़ियां निकलती हैं, गाड़ियों का पोल्यूशन और शोर शराबा, और वहीं पर कुत्ते बैठे हुए हैं, वहीं पर वो कुत्ते गंदगी खिला रहे हैं, और ये वहीं पर उठकर अपना मलमूत्र भी कर देते हैं और वहीं पर फुटपाथ पर लेट जाते हैं, और जो कूड़ा करकट में बची हुई रोटी पड़ी है उसको खाते हैं। अब ये मनुष्य देही उस कुत्ते के कंपैरिजन में देखें कौन सी जून अच्छी है, तो हमको मालूम होगा हम लोग कुत्ते को तो बिस्कुट खिलाने को भी तैयार हैं, पर उन गरीबों को बोलते हैं ये पिछली किस्मत करके हैं, काश हम उन गरीबों का भला करने के लिए उनको फुटपाथ से उठा लें, काश हम उनका घर बना दें, काश हम उनकी बीमारी का इलाज कर दें, काश हम उनके कमाई का कोई वसीला तैयार कर दें, तो हम फिर उसको किस्मत नहीं कहेंगे ना। अब ऐसा करने के बाद जब हम ये सोच लेते हैं कि ये जो बच्चा अमीर के घर में तो पैदा हुआ है पर ये अपाहिज है, ये बीमार है, और अगर हम ये उसको किस्मत के साथ लगाकर छोड़ दें तो उसकी बीमारी का इलाज कोई नहीं ढूंढेगा। आज छोटा सा सिर दर्द होता है तो सिर दर्द के बारे में अगर हम सोचते ये किस्मत करके, तो सिर दर्द से इंसान ने पड़े रहना था, पर सिर दर्द की खोज की गई। आज आप जस्ट 5 पेनीज की गोली खरीदो और अपना सिर दर्द ठीक कर लो। पर ऐसे ही छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी, चाहे हार्ट बाईपास की या कोई भी जितनी भी बीमारियां हैं, इनके इलाज खोजते हैं ना। आज हमको मालूम हुआ कि लोगों को एड्स क्यों है। अगर हम किस्मत के साथ इसको जोड़ दें तो हम इसका इलाज नहीं ढूंढेंगे ना। पिछले जन्मों को कर्मों का लेख लिख दें, इसको माथे लिखे भाग्य कर दें, तो हम इसका इलाज नहीं खोजेंगे ना। पर आज खोज की जा रही है कैंसर की, हार्ट ट्रबल की, बाईपास के बारे में, और कितनी बड़ी बड़ी एड्स और इन सारी बीमारियों के बारे में खोज की जाती है ना। इवन हमारे जीन्स में जो हमारे एंसेस्टर्स से बीमारियां आ गई हैं, पूर्वजों से, वो बीमारियों को भी दूर करने का इलाज किया जा रहा है ना। पर किस्मत के ऊपर बिलीव रखा जा रहा है। अगर हम उस अमीर के बच्चे को या गरीब के बच्चे को अपाहिज समझकर, अंधा लंगड़ा समझकर छोड़ दें, किस्मत के बारे में उसके ऊपर माथे लिखे भाग्य की रेखा बनाकर उसको छोड़ दें, तो हम बीमारी के बारे में खोज कब करेंगे। और अगर हम ये मान जाएं कि ये किस्मत के कारण नहीं है, ये बच्चा जब 9 महीने माता के पेट में पलता रहा उस टाइम कोई गलती हुई है, आज जेनेटिक्स चेक की जाती है, इवन ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में भी चेक किया जाता है, माता पिता या पीछे से कोई कमजोरी या कोई गलती आ रही है जिसके कारण इस बच्चे में ये नुक्स पैदा हुआ है, ये तो किस्मत नहीं है, ये तो भाग्य की बात नहीं है। कई जगह मैंने ये भी सुना कि एक स्त्री, उसका बच्चा 9वें महीने में पैदा होना था, सारा कुछ नॉर्मल चल रहा था, डॉक्टर ने बोला था नॉर्मल होगा, पर 7वें महीने में बच्चा हो गया। जब मैंने उनसे पूछा आपका ये बच्चा 7वें महीने में कैसे हो गया, तो वो बोलती है क्या हुआ कि मेरे को अचानक पेन होनी शुरू हुई और मैंने अपने डॉक्टर को कॉल की, तो डॉक्टर ने सिम्टम सारे मेरे से पूछे और बोला आपको इमरजेंसी में अभी अभी हॉस्पिटल आना होगा। तो मैं एकदम से इमरजेंसी में गई तो डॉक्टर ने मेरे को बोला कि आपके बच्चे के गले की चारों तरफ नाड़ू लिपट रहा है, उसका सांस घुट रहा है, तो बच्चा मर जाएगा, इसलिए अभी एकदम से सिजेरियन करके आपको बच्चा डिलीवर करना होगा। तो ये मेरा बच्चा है, माँ भी बच गई और बच्चा भी बच गया। अगर हम पुरानी सोचनी में बैठे रहते, किस्मत और भाग्य की रेखा मानते रहते, और ऐसे हम मानते रहे हैं, जब पुराने जमाने में ऐसे कोई माँ मर जाती थी और जब कोई बच्चा मर जाता था या किसी आया की गलती के कारण उसको वहाँ पर डिलीवरी के टाइम मिस हैंडलिंग हो जाती थी और कोई एक्सीडेंट हो जाता था बच्चा या माँ के मरने के बाद, हम बोलते थे किस्मत में लिखा ही ऐसे था, कर्मों की भाग्य की रेखाएं कौन मिटा सकता है, ऐसे हम बोलते थे, ऐसे हम सोचते थे। पर आज उन्होंने उस बच्चे को बचा लिया, और अगर वो ना बचा पाते तो हमने बोलना था देखो जी किस्मत में लिखा था, किस्मत में लिखा था या माँ की किसी गलती के कारण बच्चे के पेट में नाड़ू लिपट रहा था, डॉक्टर ने उसको बोला होगा कि तुम जल्दी जल्दी सीढ़ियां मत चढ़ो, तुम जल्दी जल्दी ऐसे डांस और गड़बड़ और ऊंच नीच और गुस्सा और इनपेशेंट ना हो, उसकी कोई ना कोई तो गलती होगी माँ की जिसके कारण बच्चे को नाड़ू लिपट रहा था और बच्चे का सांस घुट रहा था। इसका मतलब जब कभी भी हम कोई बीमारियों की खोज करते हैं तो हमको पहले माथे लिखे भाग्य और रेखा और किस्मत और तकदीर वाले सब्जेक्ट को ऑफ करना पड़ता है, और वही तो हमको करना है कि इस समय हम जो कोई भी धर्म के कर्म कांड कर रहे हैं किस्मत लिखे लेखों को मिटाने के लिए, भगवान जी को मना रहे हैं किस्मत में लिखे लेखों में कुछ एडिशन करने के लिए, तीर्थों पे जा रहे हैं भगवान जी को मना रहे हैं कि मेरे लेखों को मिटा दो और मुझको कुछ एक्स्ट्रा दे दो, हमारा नई दिशा की तरफ ख्याल खुल जाएगा, थॉट प्रोसेस खुल जाएगा। और अगर ये थॉट प्रोसेस खुल गया तो मालूम है क्या होगा, फिर हम जो लोग मरने के बाद कुछ भी कर्म कांड करते हैं ना, फला तीर्थ पे चले जाओ, वहाँ पर इसके फूल को परवाह कराओ, वहाँ पर इसकी ऐश को राख को रखाओ, वहाँ ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, अंतिम संस्कार ऐसे कर दो, वैसे कर दो, ये सारा हमको ना खेल समझ में आ जाएगा कि इसका ना तो पिछले जन्म से कोई ताल्लुक है और ना यहाँ पर कुछ करने से आगे कुछ फायदा होगा। प्रेजेंट की तरफ ध्यान पड़ जाएगा कि जीते जी यहीं पर मैंने अपने जो कर्म भोगे हैं, या ये बिछड़े हुए प्राणी जो चला गया, हमारा संबंधी मर गया, उसने जो कुछ जीते जी यहाँ पर किया यही इसके कर्म है, यहीं पर इसने भोगे थे। ये ऐसे है जैसे नदी की, समुद्र की एक लहर आई थी और चली गई, अब जो लहर आएगी वो नई होगी, कोई दोबारा ये 84 लाख जून काट कर नहीं आएगा ना पिछले जन्म। ऐसे समझना है ताकि हमारी प्रेजेंट के बारे में सोच नहीं खुल जाए। हम भगवान जी के सिस्टम को नहीं बदल रहे, मालूम नहीं कि ऐसा सिस्टम है भी कि नहीं। अगर हम ऐसे यत्न करेंगे बीमारियों के बारे में, गरीबों के बारे में, जात पात के वितक्रे के बारे में, ऊंच नीच के बारे में, सारों के प्रॉब्लम के बारे में हमारे पास हल निकल आएंगे, क्योंकि हम अंधविश्वास के भ्रम से उठ चुके होंगे। काश इसके बारे में हम सोचें। जब हम इस बारे में ठीक तरह सोचेंगे और समझेंगे और सच का ज्ञान हमारे दिमाग में आना शुरू हो जाएगा, नई दिशा की तरफ हम चल पड़ेंगे, तो क्या होगा, धागे तवीत जादू टूने और चिलिए काटने और मन्नत माननी, ये सब के बारे में हम अपने आप से जाग पड़ेंगे कि इससे मेरे बच्चे की बीमारी दूर नहीं होगी, बच्चे की बीमारी का प्रॉपर इलाज करेंगे। आज अमेरिका जैसी जगह में भी वो भगवान के आगे बॉल बोल के, गॉड के आगे या किसी आइडल के सामने बोल बोल के कि मेरे बच्चे को ठीक कर दो, ठीक कर दो, ठीक कर दो, और डॉक्टर के पास लेके नहीं गए तो वो माता पिता को पकड़ के उन्होंने जेल कर दिया कि इस बच्चे का इलाज कराना चाहिए था। तो ये अंधविश्वास भी अपने आप ख़त्म हो जाएगा और हम इस बात से ऊपर उठ जाएंगे कि ये किस्मत लिखे लेखों के कारण नहीं है, ये भगवान जी ने नहीं कराया है, ना अमीर गरीब, ना जात पात, ना छोटा बड़ा, ना बीमारी, ये सब कुछ हमारे ही कुछ कारण है। जैसे जैसे हम अपने फेल्योर्स को चेक करते जाएंगे तो हम सच की तरफ जा सकेंगे, और अगर फेल्योर्स को हमने लक के ऊपर डाल दिया, हमारी नाकामयाबियों को, हमारे एक्सीडेंट्स को, गरीबी को, किसी भी चीज़ को हमने किस्मत के ऊपर डाल दिया, तो ये अपने आप में क्या है, हम एस्केपिस्ट हो गए हैं, हम सच को समझ नहीं पा रहे हैं। और अगर हम एस्केपिस्ट हो गए तो हम सच की उस प्रॉब्लम की जड़ को कैसे ढूंढेंगे, हम उसका इलाज खोज नहीं पाएंगे। तो हमको ये सोचना है कि अगर हम चाहते हैं कि इस धरती से गरीबी, गरीबों को दूर नहीं करना, गरीबी दूर करनी है, गरीबी और अमीरी को बराबरता पे लाना है, ये भगवान जी के बनाए हुए नहीं है। मैं चाहता हूँ आप हमारी एक पुस्तक पढ़ें जो लिविंग ट्रेजर की तरफ से आई है, कौड़ा सच, उसका आखिरी लेख मैंने अमीर गरीब लिखा है, आप पढ़ें कि ये भगवान जी ने नहीं बनाया, शायद आपको पढ़ के उसमें से समझ आ जाए। तो फिर क्या होगा, बीमारियां भी और ऊंची नीची जात भी और पढ़ाई में बच्चों का, विद्यार्थियों का, करियर का भी, ये सब के पीछे किस्मत और माथे लिखे लेख की बात नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा कि हमारी धरती पे बीमारियां नहीं आएंगी, पर जो प्रेजेंट बीमारियां हैं उनसे हम छुटकारा पा लेंगे, और आगे भी जो बीमारियां आएंगी किस्मत समझ के उनको छोड़ नहीं देंगे, हम उनका इलाज करेंगे। तो हम धरती पे वो स्वर्ग को मान सकेंगे, एंजॉय कर सकेंगे, जिसको हम मरने के बाद समझ रहे हैं ना, वो वाला स्वर्ग हम धरती पे ही, यहीं पर, एट प्रेजेंट, आज अभी, नकद, उधार नहीं, मरने के बाद नहीं, मरने के बाद कोई बहिष्ट जन्नत स्वर्ग नहीं, अभी यहीं आज इसी वक्त स्वर्ग को हम प्राप्त कर सकेंगे। हम बोलेंगे ये धरती ही स्वर्ग है, पर लेकिन हमारे को इस सोचनी से ऊपर उठना होगा कि यहाँ पर जो कुछ होता है भगवान जी नहीं करा देते हैं, भगवान जी ने अमीर गरीब नहीं बनाए हैं, इस धरती पर जो कुछ होता है ऊंची जात और नीची जात वाले भगवान जी ने नहीं बनाया, ये हमने बनाया। इस धरती पर कामयाब और नाकामयाब भगवान जी नहीं कराते हैं, हमारे कारण, सब कुछ हमारे कारण है, बीमारियां भी हमारी गलती के कारण है, और सारे रिजल्ट्स जो कुछ भी सफल और असफलता के सिट्टे निकलते हैं वो सबके कारण हम हैं। पर हमको सोचना क्या होगा, तकदीर मैंने बनानी है। हमको सोचना क्या होगा, माथे लिखे पिछले लेखों को मैंने मिटाना है, अगर होते भी हैं तो। आई डोंट बिलीव इन गुड लक और बैड लक, आई डोंट बिलीव इन रेड कलर स्टोन और ब्लू कलर स्टोन और पर्पल कलर स्टोन और ग्रीन कलर स्टोन, आई डोंट बिलीव इन जोडियक्स साइंस। मैं किस्मत पे बिलीव नहीं रखता, मुझको समझ में आई है मैंने अपनी तकदीर, मैंने अपनी डेस्टिनी अपने आप बनानी है। मुझको भगवान जी के ऊपर नहीं छोड़ना। अगर मेरी कोई प्राप्ति हो गई तो धर्म से मैं ये सीखूंगा कि भगवान जी को बोलूंगा, भगवान जी तेरा कीता जा तो नाही, मैनू जो कीतोई, मैं निर्गुणी आरे को गुण नाही, आपे तरस पे होई तरस पे आ, मेरा मत होई सतगुर सज्जन मिलिया। मेरे को सच्चा ज्ञान मिला तो मैंने उसके अनुसार जो कुदरत के नियमों के अधीन रहकर सच के काम किए, तो जो मुझको कामयाबी मिली ये कामयाबी भगवान जी आपकी है। दिस इज कार्ड डेस्टिनी, अपने आप बनाई अपनी तकदीर, अपनी किस्मत हमने अपने आप यहाँ पर लिखी और यहाँ पर भोगी। मुझको उम्मीद है कि इन विचारों से हम नई दिशा की तरफ अग्रसर हो सकेंगे। अगर आपके कोई सवाल जवाब हों तो आप हमको वेबसाइट, ईमेल और पत्र व्यवहार करके इसके बारे में आगे प्रश्न उत्तर कर सकते हैं।